कटेगा काटेगा कल।
देखिए साहब, गोरे ने भी ये लफ्ज़ कहा ना कि वॉट एवर गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, जो इंसान करता है वही देख लिया करता है। जमशेद जानू, आई लव यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बच्चा, जीते रहो। बाय द वे, फ्रिज का क्या बना ये भी बता दो। मोहिंदर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। आपने लिखा है कि वीर जी थाड़े वास्ते पैगाम आया, वीर जी वेरी गुड प्रोग्राम बट आई एम वेटिंग फॉर सुल्तान रही एंड साइमा के बारे में प्रोग्राम।
महेंद्र जी, असं जल्दी प्रोग्राम करांगे सुल्तान राय के बारे भी, इंतजार करो। रोजियां तो बाद रोजे हो जा, आज आ रहे ने
रोजियां से महेंद्र जी साढ़े शैतान बंद हो
जाए। जी जी जी। अच्छा, बहरहाल मुमताज जी, ये वसीम अब्बास साहब ने भी हमें एक मैसेज भेजा है मोहम्मद अली साहब के बारे में। उन्होंने फिल्म में काम किया उनके साथ शुरू में,
जी जी,
तो वो जरा देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक फिल्म बनी थी राजा की आएगी बारात, उसमें मोहम्मद अली साहब, उसमें मोहम्मद वो और दूसरा गाना है वो। फिल्म राजा की आएगी बारात जो थी, उसमें मोहम्मद अली साहब के साथ आपने काम किया था, उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। पहले वसीम अब्बास का मैसेज देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम अब्बास और आप मुझे सुन सकते हैं रेडियो 770 AM टोरंटो। और मुझसे कहा गया है कि मैं मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी पे कुछ कहूं, तो बहुत मुश्किल है एक डेढ़ मिनट में मैं उनके बारे में कुछ, उनकी किसी एक खूबी का भी अहाता कर सकूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं उनके फन के बारे में तो खैर कोई तबसरा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है। मैं उनके सामने बहसियत एक फनकार, एक बोने किसी हैसियत रखता हूं। तो मैं सिर्फ उनके बारे में ये कहूंगा कि मैंने उनके साथ काम किया, मुझे ये बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मौका मिला और मैंने उनके साथ एज प्रोड्यूसर भी काम किया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैंने अपनी होश में किसी को एक ट्रू स्टार देखा है, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी फनकार के अंदर ये खूबियां हैं, तो वो एक ट्रू स्टार है, तो वो मोहम्मद अली साहब ही थे सिर्फ। और बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़े दिल के मालिक, इंतहाई शफीक और बहुत मोहब्बत करने वाले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में कोई खास मकाम अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया
जी। मुमताज जी, फिल्म थी राजा की आगे बारात, इसमें मोहम्मद अली साहब, कोई ऐसा कोई वाकया इस फिल्म के दौरान कोई
वही एड़ी वाला,
ये
इसमें
भी एड़ी थी
और अली साहब जो थे
वो वही जूती थी कि कोई और जूती की एड़ी थी?
मैं पहन नहीं सकती थी ना, क्योंकि पहाड़ थे और वहां मुझे डांस करना था, गाना गाना था।
अच्छा,
बस वही मेरे साथ प्रॉब्लम पेश आता था बार बार, और बार बार मुझे घूरते रहते थे और ऐसे ऐसे करते रहते थे कि अच्छा शूटिंग के बाद तो मैं देख लूंगा शूटिंग के बाद। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं क्या कर सकती थी। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज दिया अभी वसीम अब्बास ने, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है उनकी, उनके लिए कुछ भी कहना। वो एक हर शख्स में एक खूबी होती है या दो होती है, लेकिन उनमें वो सारी खूबियां थी जो एक इंसान में होती है, या यूं कह लें कि एक फरिश्ते में होती है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, मैंने कभी चिल्लाते नहीं देखा, हर वक्त मैंने उनको अच्छे मूड में ही देखा है।
जी जी।
और बहुत ही नफीस और बड़े ही अजीम इंसान,
और अल्लाह ताला ने उन पे करम नवाजी की, देखें।
और एक बात मलिक साहब, मैं माफी चाहती हूँ,
जी जी,
अभी जो आपने गाना दिखाया है उसमें जो वो रो रहे हैं, वो अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाते थे।
अच्छा,
हम लोग तो रोने के लिए ग्लिसरीन लगाते हैं ना,
जी जी,
ताकि हमें टीयर्स आए, हम रोए, लेकिन वो कुछ भी नहीं लगाते थे। अल्लाह का इतना करम था उन पे कि जब इस तरह का सीन आता था तो वो ऑटोमेटिक खुद ही रो पड़ते थे, और हिचकियों के साथ रोते थे।
यानी वो दिल था, वो उस कंडीशन को अपने ऊपर तारी कर लेते थे।
बिल्कुल ऐसी।
आपने फिल्म के हवाले से जिक्र किया कि आप के साथ हील पहनने पे हुआ करता था और बाज़ोकत मजबूरन अगर नहीं पहनती थी, तो ज़ेबा साहिबा का भी तो कद उनके मुकाबले में बहुत छोटा,
लेकिन वो भी हील पहनती थी। वो तो हर वक्त हील पहनती थी क्योंकि वो हमारी तरह भुड़कती नहीं थी ना।
नहीं नहीं, ये जो डांस थी इनका तो डांस जो था ना, मतलब इनका आप डांस देखें, आपने कभी ज़ेबा बेगम का इस तरह डांस देखा है?
नहीं लिया भाई, एज ए बीवी भी मतलब साथ चलना।
यार बीवी देखे ना, अमिताभ बच्चन की बीवी जो थी वो क्या नाम है, जिया भादरी, जिया भादरी 4 फुट 4.5 फुट की औरत है।
सही बात है, सही है? लेकिन अली साहब जो थे ना वो मैनेज कर लेते थे, मोहम्मद अली साहब मैनेज कर लेते थे।
जी जी
मैनेज
जी जी सही। तो ये देखते हैं जी गाना मुमताज बेगम के साथ, तू साथ भी है बरसात भी है, मौसीकी एम अशरफ, शायर तस्लीम फाजली, फिल्म राजा की आएगी बारात।
तू साथ भी है बरसात भी है, तू साथ भी है बरसात भी है,
साहिबा की आवाज़ मुमताज़ साहिबा के साथ साथ आप देख रहे थे जनाब अहमद अली मरहूम को, अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जमशेद जकिया बहुत शुक्रिया, और बहुत आला आपने कहा मुमताज़ साहिबा वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नो डाउट अबाउट इट, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, ग्रेट हीरोइन, ब्यूटीफुल सॉन्ग, रंजिश ही सही के बारे में आपने लिखा। और यहाँ पे मोहम्मद सदीकी साहब आपने कहा कि मुमताज़ बेगम केम लेट बट नाइस, नो शी केम राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एंड देन जमशेद ने एक बार बताया है कि मुमताज़ जी आपने उनके मलिक इश्तियाक अहमद बिल्लू की फिल्म में भी काम किया था, काली बस्ती मेरा ख्याल है या खुदा और मोहब्बत,
मुझे याद नहीं।
सही, यार प्यारा और बड़ा भाई वगैरह वगैरह। जमशेद थैंक यू वेरी मच। और गुलबर्ग में, बिल्कुल जी, गुलबर्ग में अली जेब का घर अब तो वहाँ पे बहुत बड़ा पुल बन गया जिसने हमारा डिफेंस में जाना आसान कर दिया। एक ज़माना था वो एक छोटी सी गली हुआ करती होती थी, पुली के नीचे से गुजरना पड़ता था, एक डंडे वाला पहले इधर वाली ट्रैफिक को गुजारता था फिर उधर वाली ट्रैफिक को गुजारा करता था, मगर फिर जब ये पुल बनाना तो अली जेब की घर की निशानी ये थी कि उनके घर के ऊपर एक बोट सी बनी हुई थी। और बहरहाल मैं तो अब भी जब गुजरती हूँ तो मैं It hurts. जी लिया करते
जी। ये देखिए जी, मोहम्मद अली साहब ने 10 निगार अवार्ड लिए, ये किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट
का बहुत बड़ा ऑनर है।
और इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया 1984 में, और उसके बाद इनको तमगा इम्तियाज भी मिला, और बाकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, इवन हिंदुस्तान में जो नौशाद साहब का जो अवार्ड था, या दुबई में, या कितने अवार्ड है, पता पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा, इतने अवार्ड इनको मिले। इनका एक गाना है जी, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, फिल्म थी अफसाना जिंदगी का, मौसीकी एम अशरफ और शायर तस्लीम फाजली, जरा ये देखिए। जी गलत हो गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, फिल्म अफसाना जिंदगी का।
कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो जाया करते हैं,
टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वो बस,
ये बड़े बड़े शहरों में तो सब कुछ होता है, वो लोग चाहते हैं उतनी देर में मुमताज साहिबा को देख लें।
जी देखें जी, ये गाना देखें। नाज़रीन, मौजूदा सामईन,
अभी तो सामईन नहीं है, सामईन से तो हम इजाज़त चाहेंगे, मगर नाज़रीन,
हम अपने पास वक्त होता तो हम इस प्रोग्राम को और देर तक करते, हमारे पास अब वक्त नहीं है। मुमताज़ साहिबा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहीं, आपका एक एक गाना जो है हम प्रोग्राम को खुदाफिस करेंगे, उसके बाद जो गाना आएगा
एक लाइन गुनगुना के हमें सुना सकती हैं?
मैं जरूर आके सुनाऊंगी आपको,
आप सुनाएंगी, वो कह दिया उन्होंने। और ये फिल्म थी अनदाता, ये आप जब हम खुदा हाफिज कर देंगे उसके बाद ये सामाईन नाजरीन ये गाना जरूर देखिएगा, ये मुमताज बेगम के साथ मोहम्मद अली साहब हैं और फिल्म थी फिल्म अनदाता, तो ये गाना जरूर देखिएगा। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ और दुआओं के साथ लियाकत नवाज मलिक इजाजत चाहता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम पे फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। आपने कुछ कहना है अब मुमताज जी, आपने कुछ कहना है अपने हमारे सामाईन नाजरीन को?
मतलब ये जो हम गीत आपका सुनाने जा रहे हैं, आप इससे कोई याद हमारे साथ शेयर कर लें।
नहीं, इसमें तो कोई ऐसी याद नहीं है जो मैं शेयर कर सकूं।
चलें, आप
मैं से... आपका शुक्रिया अदा करती हूं मलिक साहब और आरफा जी, आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने इस काबिल समझा कि मैं मोहम्मद अली साहब के बारे में कुछ कह सकूं। और इतना लविंग कपल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जितने अली साहब अच्छे थे उतनी ज़ेबा भाभी भी अच्छी थी। एक दफा का इत्तफाक है कि घर पे मैं बैठी हुई थी तो मुझे कहती है कि अली जहाँ पाँव रखे उस जमीन की भी खैर हो। तो मैंने ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह वो अब ठीक है, और अल्लाह ताला मोहम्मद अली साहब को खरीके रहमत फरमाए। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी हमने जान नहीं छोड़ी।
आपने बहुत खूबसूरत बात पे लेकर प्रोग्राम शुरू किया कि एक बीवी की मोहब्बत अपने शोहर के लिए, कि ज़ेबा साहिबा यानी ये सुनी सुनाई बात नहीं, उन्होंने अपने खुद से सामने सुनी मुमताज़ बेगम साहिबा ने, कि वो उन्होंने कहा कि अली जहाँ पांव रखे उस जमीन की भी खैर।
अल्लाह ताला उनको मोहम्मद अली साहब को अगरी रहमत करे।
बिशबा जी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच।
इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, और ये गाना जरूर देखिएगा अंदाता फिल्म का, और आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ इजाजत चाहते हैं।
पाकिस्तान जिंदाबाद।
चलते चलते राहों में, इन राहों में जितनी मिल गए, ये जहां मिल गया मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया
मेरी उम्र कटेगी बाहों में, इन बाहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया
मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया
मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा, रहोगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा, यूं ही तो दिलों में मोहब्बत का शोला भड़कता रहेगा, भड़कता रहेगा।
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
BBC کو ایسی قابل یقین شہادتیں ملی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسکیم کیسے چلائی جا رہی ہے۔ سنکیانگ کے اس گاؤں میں حکام کو 100 افراد کی ضرورت ہے جنہیں نوکری کے لیے ملک کے دوسرے حصوں میں بھیجا جانا ہے۔ انہوں نے یہاں سٹال لگایا۔ سن 2017 میں سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق یہاں کسی کو اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ پھر حکام گھر گھر جاتے ہیں۔ ایک اہلکار کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں رہو گی تو تمہاری جلد ہی شادی کر دی جائے گی اور پھر تم کہیں جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اہلکار اس سے پوچھتا ہے کیا تم جاؤ گی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن پروپیگنڈا اور سختی سے قائل کرنے پر یہ نوجوان عورت جانے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن وہ کہتی ہے اگر سارے جائیں گے تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ ابھی بی سی کو ایسی نئی شہادتیں ملی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اپنے خاندان اور اپنے کلچر سے دور کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ چین کے اعلی حکام کی طرف سے تیار کردہ ایک جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورکروں کی دوسرے علاقوں میں منتقلی ویغر اقلیت کو ضم کرنے میں مددگار ہے، جس سے ان کی سوچ بھی بدلتی ہے اور ان کی آبادی کی کثافت کو بھی کم کرتی ہے۔ یہ تحقیق غلطی سے آن لائن پوسٹ کر دی گئی تھی۔ سنکیانگ کی کچھ مسلم اقلیت کو پہلے تعلیم نو کے کیمپوں میں بھیجا جاتا ہے، جس کے بارے میں چین کا موقف ہے کہ وہ شدت پسندی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پھر انہیں فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔
فیکٹری میں 200 ورکر تھے جو بچوں کے کپڑے بیچتے تھے، اور ہم چین کا قومی ترانہ گانے کے پابند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنا جلدی کام کرو گے ہم اتنی ہی جلدی جانے کی اجازت دے دیں گے۔
رہائی کے بعد بہت کم لوگ ہی چین سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جنہیں یہاں کام کے لیے منتقل کیا جاتا ہے ان کی اکثریت تعلیم نو کے کیمپوں میں نہیں گئے تھے، انہیں براہ راست ان کے گاؤں سے یہاں بھیجا جاتا ہے۔ اس جائزہ رپورٹ میں ایسی تفصیلات بھی ہیں کہ انہیں کیسے گروہوں کی شکل میں سیکیورٹی گارڈز کی نگرانی میں لے جایا جاتا ہے اور انہیں ایک خاص سیاسی سوچ ذہن نشین کرائی جاتی ہے۔
یہ بہت غیر معمولی طور پر مستند رپورٹ ہے جسے ایک ممتاز ماہر تعلیم اور سابق حکومتی اہلکار نے تحریر کیا، جس سے سنکیانگ تک لازوال رسائی حاصل ہے۔ اس رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بڑے مقاصد ہیں، وہاں آبادی کی کثافت میں ہیرا پھیری اور علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا مقصود ہے، جو میری رائے میں بہت ہی تشویشناک ہے اور یہ انسانیت کے خلاف جرائم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
ہمیں ایسی مصنوعات ملی ہیں جس میں استعمال ہونے والا دھاگا اس فیکٹری میں تیار ہوا اور وہ مصنوعات امیزون پر فروخت ہو رہی ہیں۔ اس فیکٹری کا کہنا ہے کہ اب وہ ویغر لوگوں کو ملازمت نہیں دیتی۔ امیزون نے ہمیں بتایا کہ وہ جبری مشقت کو بالکل برداشت نہیں کرتی، اور یہ فیکٹری پلاسٹک کی ایسی اشیاء تیار کرتی ہے جنہیں انٹرنیشنل برانڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ورکر سے بات کی جس نے تصدیق کی کہ اب بھی کئی ویوگر ورکر اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن انہیں دوسرے چینی ورکروں کے برعکس فیکٹری کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چین کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی بی سی نے جس جائزہ رپورٹ کو دیکھا ہے یہ اس کے مصنف کے ذاتی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کے بہت سے مندرجات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایک مسئلہ ہے جس پر رہنمائی اور مسلسل کوششوں سے ہی قابو پانا ہے۔
آئیے اب آپ کو لازوال محبت کرنے والے جوڑے ثنا اور داؤد کی کہانی دکھاتے ہیں۔ داؤد نے ایک حادثے کی وجہ سے اپنے بازو اور ٹانگ کھو دیے۔ ایک متحرک اور توانائی سے بھرپور شخص چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا اور کام کاج کے قابل نہ رہا۔ ایسے میں ثنا نے ان کا ساتھ دینے کا ناقابل یقین فیصلہ کیا۔ ان کی کہانی آپ تک پہنچائی ہے فرقان الہی اور عمر دراز ننگیانہ نے۔
گھر والے تو نہیں مانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیا کرو گی، داؤد کی بازو نہیں ہے، داؤد کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تم کیا کرو گی۔ پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میں پھر گھر والوں سے لڑ کے آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے داؤد کا ساتھ دینا۔ مجھے کہتے تھے تو ایک بندے کے لیے سب کو چھوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے وہ ہی چاہیے بس۔
ڈاکٹر نے کہا کہ بازو تو پھر بھی لگ جائیں گے، جان ہی ہم ڈال سکتے آپ کے اندر۔ پہلے انہوں نے میرے بازو تھوڑے کاٹے تھے، کونیوں تک کاٹے تھے انہوں نے میرے بازو۔ उसके बाद उन्हें सारे बाजू काटने पड़े।
ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लेके आए थे, अभी 8 घंटे हुए थे, अभी उसको होश ही, कहते थे नहीं आना। फिर मैंने इसको आवाज़ दी इसके कान में, फिर एकदम से इसने आंखें खोली। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी।
मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसे कहूँगा कि आप मेरे साथ ही रो, ये वो खुद फोर्स करूँगा तो ये तो इसकी लाइफ खराब करने वाला मकसद होगा।
मैंने जब एक वादा कर लिया, मैंने एक फैसला ले लिया था, तो मैंने उसको निभाना ही था। बस मुझे नहीं किसी की भी परवाह, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बस दाऊद के बारे में सोचती। मैंने उसको कहा मैं हूँ ना, मैंने कहा खुदा ने तुमसे बाजू ली है और तुम्हें दी भी है।
खुश तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जब उसने बताया कि घर वाले ऐसे पापा नहीं मान रहे तो ये वो, तो मैंने उसे कहा कि आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप है वो बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि दाऊद नहीं बचेगा, रोज़ाना वो कहते थे कि आज दाऊद नहीं है, आज नहीं है दाऊद।
तो 1 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बाकी फ़ोन पर हम बात करते थे।
तब तो हमने देखे जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन तब मैं सही था। जो इंसान खुद कर लेता है ना, वो खुद ही करता है अपना काम। जब कोई वॉशरूम वगैरह करवाता है, कोई भी कोई काम करवाता है ना, तब बस थोड़ा सा होता है कि खुदा ने क्या कर दिया मेरे साथ।
फिर दाऊद ने कुछ नहीं, मैंने कहा अब बनाओ कुछ कहना, अब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई। फिर भी कहा कि तुम देख रही हो कि मेरा हाल क्या है, मैंने कहा यार मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसे भी हो तुम मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर कहता ठीक है।
मुझे कोई मुखैर हजरात वजीरे आला से अपील है कि मुझे कोई मसनूई तौर पर बाजू वगैरह लगवा दिए जाएं, कोई कारोबार या करवा दिया जाए।
मैं दाऊद को ठीक देखना चाहती हूँ, बस बाजू लग जाए उसको, उसकी टांग लग जाए, वो मेरे पास बस चलता फिरता रहे और मुझे कुछ नहीं रहे।
आप दाऊद और सना की इस लाजवाल मोहब्बत की पूरी कहानी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @kkaramat। आज सैरबीन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। खालिद करामत को इजाजत दीजिए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
COVID-19 की वैक्सीन है और आप?
मुझे कैसे पता चलेगा कि COVID-19 की वैक्सीनें महफूज हैं?
जब भी कोई नई चीज आती है तो सवालात का जहन में आना आम बात है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हेल्थ कैनेडा सिर्फ उन वैक्सीनों की मंजूरी देता है जो महफूज, मुअस्सर और आला तरीन मैयार की हामिल होती हैं। कैनेडा अपने आला मैयारात और सख्त गिर वैक्सीन के जायजे के अमल की बदौलत दुनिया भर में जाना जाता है। COVID-19 की वैक्सीनों के बारे में canada.ca/covid-vaccine पर मजीद मालूमात हासिल करें। हुकूमत कैनेडा की तरफ से एक पैगाम।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
एशियन फूड सेंटर 905-713-1338 आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स ब्रेडरी एंड एग बेवरेज एंड कंफेक्शनरी ब्रांडेड फूड्स पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड स्वीट्स एंड समोसास ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 905-793-1338 होम डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल एशियन फूड सेंटर 905-793-1338 एशियन फूड सेंटर कर ले नाम को या फिर जिस पर ना हो हर काम सफल को पाल करो
तीन दुश्मन करने तो घर हो के दादा
हर काम सफल को पाल करो
बरसों से जाना पहचाना काबिल एतमाद नाम रियल एस्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 647-898-6245 सिटीज के रियल एस्टेट की
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530 Roasted chicken, world's best spicy chicken, Albeck style. Best chicken sandwiches in GTA, 50% less greasy and oily. Roasted chicken is located at 1758 Lawrence Avenue East at Victoria Park. Delivery available with Uber, DoorDash, Skip the Dishes. Business opportunities available. For more information, call 647-748-3444. That is 647-748-3444.
Ayayo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden, ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872
जी हाँ सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए बायोकैम पेस्ट कंट्रोल हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलिजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 647-848-4020 647-848-4020
तू मेरा खुदा
सब्सक्राइब करिए सपना साफू ऑफिशियल चैनल को। अब लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को, हंसना
तेरी हर मंगदी बेवफा निकली जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है। किससे बहारों के बीते नजारों के, किससे बहारों के बीते नजारों के, फिर गा के सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद आती है। इतना तो बताओ क्या ये चांदनी जाकर, इतना तो बताओ क्या ये चांदनी जाकर, कोई ख्वाब जगाती है और तुमको सताती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पा दी है, तेरी याद आती है। जब याद मेरी तुमको हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो, फिर भूल के सब बातें मेरे पास आ जाना और तोड़ के सब नाते मेरे पास आ जाना, फिर लौट के मत जाना। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है।
आशिकों की आंखों में जो पानी है, सब इन हसीनाओं की मेहरबानी है।
उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
तेरे